के लिए
आया। वाह वाह मजनून साहब, एक साल तक हंसने का मौका मिल गया।
बस भी करो शिकायत, बेचारी को कितना परेशान करोगी तुम।
आई एम सॉरी, आई एम डोंट अंडरस्टैंड। सलाम मुर्तजा साहब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं भाई? नसीम इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाती? अरे आप आखिर खाला के बेटे हैं नसीम के, आइए। और फिर शादी भी तो आप दोनों की होने वाली है।
अच्छा ठीक है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, ज़हमत नहीं दूंगा, मुझे असल में एक सेमिनार में जाना है।
सेमिनार? कैसा सेमिनार?
सेमिनार का उन्वान है मुल्क की बहिष्यत में मछली के शिकार का किरदार।
वाह भाई, नसीम को तो आप पे बहुत इफ्तिखार करना चाहिए।
जर्रा नवाजी आपकी, मैं तो बस सलाम करने चलाया था, कुछ काम नहीं था खास।
तो फिर हमें इजाजत दें, हम अंदर चलते हैं। चलो शकाय,
इंशाल्लाह फिर सेमिनार के बाद आइएगा। अच्छा
अच्छा, कितनी अच्छी आप शकाय साहबा।
चलो
वैसे शिकायत तुमने ये अच्छा नहीं किया।
बहुत शुक्रिया।
क्या मतलब शुक्रिया?
मतलब ये कि ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है कि हमें एक दूसरे के काम हमेशा अच्छे ही लगे। मिसाल के तौर पर आज क्लास में तुमने एक सवाल के जवाब में मेरी मदद नहीं की, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कुछ बुरी आदतें होती हैं।
अच्छा तो बात ये है।
हाय बेचारी नसीम तो इस पर भी तैयार है कि आधी उम्र घट जाए लेकिन मुर्तजा यहाँ ना आए। देखो तो गुस्से में कैसी तिल मिला रही है।
शिकायत, नसीम जब ऊपर आई तो उसको तंग नहीं करना। अच्छा
जाओ, चलो जाओ भैया, खुदा हाफिज़।
पी रहे मैं। अरे एक ग्लास पानी भी उस बेचारे को नहीं दिया, प्यासा ही चला गया।
तुम अब बस भी करो।
मछली लाया है, चलो खुद ही खाए।
इसे क्यों छू रही हो? हाथ मत लगाओ।
जैतून लाया है, खाओ खाओ। अगली बार मुर्तजा आया तो उससे मैं इसका तरीका पूछूंगी कि कैसे बनाओ।
इधर लाओ, इधर
लाओ, खाओ ना।
देख लिया?
अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो, पहुंचा दूं तुम्हें।
जाओ।
बड़ी बुरी बात है, लोग देख रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप?
लेकिन मैंने
कागजात दीजिए अपने।
लेकिन मैंने किया क्या है?
मेरे साथ आइए, पता चल जाएगा आपको।
आप इन्हें जानती हैं?
नहीं तो।
पहले कहीं देखा है?
नहीं तो।
मैं वापस आ रहा हूँ।
किस्मत अच्छी थी, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। अब चलो सुलह सफाई कर लो और बात खत्म करो, अपने घर जाओ। आप अंदर आएं। खवातीन के साथ बदतमीजी करते हो?
मैंने कोई बदतमीजी नहीं की।
तो फिर यूं ही पकड़ लिया था? हाँ
जी हाँ।
तो फिर ये भी झूठ है कि एक लड़की को तंग कर रहे थे?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे, गलत फहमी हुई है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की।
तो वो खातून कौन थी?
वो मेरी बीवी है।
बीवी?
जी।
तो फिर तशरीफ रखो कि वो खुद आकर बात करें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? जरा नवाजी है। देखो, मैंने पता लगाया है, 2 हफ्ते पहले हमारे इलाके में गिरफ्तार हुआ है, उसके फाइल भेज रहा हूँ। खुदा हाफिज। बाबक
अली,
ठीक हो अली? कैसे हो बाबक? ये तुम ही हो?
देख तो रहे हो तुम।
ये क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है अपनी?
लंबी दास्तान है, फिर कभी।
बताओ तो किस्सा क्या है?
छेड़खानी का केस है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम और छेड़खानी।
हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा है।
कह रहे हैं कि वो खातून इनकी बीवी थी।
भाई, परवाना थी, तुम्हें तो याद होगा।
अगर तुम्हारी बीवी थी तो सवार क्यों नहीं हो रही थी?
घरेलू प्रॉब्लम थी क्या? यहाँ सब बताना पड़ेगा।
वो खातून भी आई है?
नहीं सर, उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस फुटपाथ पे चल रही थी।
उसे बात भी की है?
हाँ जी, उसका नाम और पता लिख दिया है, उस कागज पर है।
अच्छी बात है, तुम जाओ अपना काम करो, बैठो बाबक। बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे भी लिखा है उस खातून का नाम परवाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर क्यों पुलिस को लगा कि तुम उस खातून को छेड़ रहे हो।
असल में अली, एक घरेलू प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी गलत फहमी। भाई, औरतों को तो जानते हो, उनका हथियार नाराज होना और रोना होता है। बस इस पूरे माजरे में मेरी बेइज्जती हो गई।
फिक्र ना करो, हो जाता है।
अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद परवाना को बुलाकर पूछ लो।
नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ, तुम ऐसे आदमी ही नहीं हो। कानूनी लिहाज से ये केस खत्म हो गया है, लेकिन गैर कानूनी लिहाज से अभी जारी है।
क्या मतलब?
मतलब ये कि अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा दोस्ती में बेवफाई के इल्जाम में। अरे बेवफा, हम लोग 10 बरसों तक दोस्त रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहे हैं, स्कूल में एक साथ पढ़े हैं, बड़े अच्छे दिनों में साथ रहे हैं, तुम भूल गए? ठीक है भाई, तुम पैसे वाले हो गए हो, खुदा का शुक्र, लेकिन दोस्ती का तकाजा ये नहीं। अच्छा तुम खुद बताओ, आखिरी बार तुमसे कब मुलाकात हुई है?
ठीक है, ठीक, तुम सही कह रहे हो, मेरी गलती है, लेकिन अली इसकी एक वजह थी, मैं 2 साल से ईरान में नहीं था।
आजकल कर क्या रहे हो?
कंप्यूटर की एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, यही सब।
तो आखिरकार वही काम जिसमें दिलचस्पी थी।
गाड़ी तैयार है सर।
ठीक है, अभी आता हूँ। बाबक माफ करना यार, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो मेरा पता मालूम ही है, जब भी कोई काम हो मुझे याद कर लेना।
मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।
नसीम, मैं जरा कोचिंग क्लास जा रही हूँ, तुम्हें कोई काम तो नहीं है?
नहीं, तुम जाओ।
क्या बात है, परेशान?
नहीं, कोई बात नहीं।
शिकायत की बात बुरी लगी है?
नहीं भाई, वो तो बेवकूफ है, छोड़ो।
देखो इस वक्त शिकायत भी घर पे नहीं है, अगर कोई बात है तो बताओ।
मैंने कहा ना कोई बात नहीं है।
अच्छी बात है, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं जिद नहीं करूंगी। हो सकता है मुझे नहीं बताओ तो बेहतर।
रेहाना, खुदा के वास्ते अब तुम इस तरह की बातें ना करो, तुम कोई गैर तो नहीं हो। बात यह है कि जरा मेरा दिल घबरा रहा है।
मुर्तजा की वजह से?
हाँ।
तो क्यों? वो तो तुम्हें बहुत चाहता है।
जानती हो प्रॉब्लम यही है रेहाना, मैं
तो रो क्यों रही हो? अच्छा पूरी बात बताओ तो, क्या हुआ है?
मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती।
तुम्हें यकीन है?
जानती हो जब मैं छोटी थी तो मुझसे कहा गया तो उसे शादी कर लो, मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
नसीम तुम्हें यकीन है?
मैंने बहुत कोशिश की कि उसे पसंद करूं लेकिन नहीं हो पाया।
अच्छा अगर यही बात है तो परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी।
किस तरह?
तुमसे क्या, बस मेरे ऊपर छोड़ दो।
आखिर तुम करना क्या चाहती हो?
उफ़ो, मेरी बहन तुम इन सब चीजों की फिक्र करना छोड़ दो, मैं सारा मामला निपटा दूंगी, तुम सिर्फ अपने थीसिस पर गौर करो।
लेकिन
नहीं, सिर्फ थीसिस, ठीक है? अब आंसू पोछ लो।
किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता, सब भेड़िए हो गए हैं।
एक मिनट, तुम्हारी बात का मतलब क्या है?
कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल पुराना है।
तुम्हें यकीन है?
मुझे यकीन नहीं आता कि कोई तुम्हें भी उल्लू बना सकता है।
ठीक है, क्या कीमत होगी?
फ्री में भी दोगे तो नहीं खरीदूंगा, अगर कुछ फायदा होता तो मैं जरूर इसे रख लेता। बिल्कुल फजूल है ये, यहां से जब बाहर जाना तो जो पहला कूड़ेदान दिखाई दे उसमें इसे फेंक देना।
भैया तुम्हें बताऊंगा,
मैं जो कहता हूं कि सब भेड़िए हो गए हैं इसका मतलब यही है। आजकल तो बहुत कुछ करने लगे हो।
जैसे?
जैसे मारपीट, इस तरह का बिजनेस। ये बताओ तुम्हें हो क्या गया है? लड़के कहीं किसी पर दिल तो नहीं आ गया है? एक बात ना भूलना, तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो, मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता। इससे पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे अलावा कोई भी यहां ना आए। जानते हो क्यों? क्योंकि इन जानवरों के बीच कोई कायदे का आदमी नहीं है। लेकिन तुम शुरू से ही सबसे अलग थे, मेरे आदमी नहीं थे लेकिन मुझे पसंद आए थे। तुम्हारी लगन, होशियारी और सबसे अहम ये कि किसी के रोब में नहीं आते थे। कुछ ऐसा करो कि मेरी राय न बदले, ऐसा करो कि हम साथ काम करते रहें, समझ रहे हो ना?
बच्चों की कसम खाता हूँ बाबा, मुझे नहीं मालूम था बाबा, मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था बाबा, मुझे वाकई यकीन करो मेरी बात, तो मेरे फरिश्ते भी नहीं जानते थे कि ये बाल नकली है। खुदा की कसम यकीन
करो, मालूम है तुम सही बोल रहे हो
बाबा, यकीन करो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, नहीं मालूम था खुदा की कसम। अच्छा ठीक, सारा एक एक पैसा एक एक कौड़ी तुम्हारी।
क्यों? भाई तुमको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैं अपने बच्चों की कसम खा लूं बाबक, मैं जानता हूं उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका गला दबा दूंगा। बाबक तुम यकीन करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। बाबक मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे धोखा।
लगता है तुम्हारी आंख कुछ मोटी हो गई है। मैंने पूछा क्यों?
क्या क्यों, क्या क्यों?
तुम्हारे इस काम की वजह से मैं लोगों के सामने बेवकूफ बन गया। तुम्हारी वजह से हर कसो नाकस ये समझ रहा है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकता है।
यकीन करो बाबक, तुम गलत फहमी में हो। मैं उल्लू बना हूँ, तुम्हारी कसम मैं बेवकूफ बना हूँ। मैं खुदा की कसम खाता हूँ। देखो ये
इसे अपने पास रखो,
ये तुम्हारे पैसे हैं।
ये भी तुम्हारा। ये मेरे लिए एक सबक है कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा ना करो। किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता, किसी पर भी नहीं। जी फरमाएं, आप कौन? रहाना साहिबा आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया जो आपको मेरी फिक्र है, मैं ठीक हूँ जी, बेहतर हूँ। पट्टी तो खुल गई है, टाके भी खुल गए हैं। शुक्रिया जी, जरूर जरूर आऊंगा। शुक्रिया, जरूर, एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
कौन?
माफ कीजिए जरा, आप बाहर आ सकती हैं?
आप कौन हैं?
आपकी एक सहेली के बारे में जरा बात करनी है।
रेहाना साहिबा के बारे में?
जरूरी बात है बहुत।
आप कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी
हैं? क्या हुआ रेहाना को, कुछ हो गया है?
नहीं नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है। असल में मैं कुछ शादी वादी का मामला है। मैं आज रेहाना के घर भी गई थी, दरवाजे पर काला कपड़ा लगा था, और पड़ोसी है ना जो अकदस साहिबा, उनसे यहाँ का पता मिला। आप उन्हें जानती है ना, अकदस साहिबा को?
जी जी जानती हूँ, आए ना।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है। बस रेहाना साहिबा के बारे में कुछ पूछना था आपसे।
रिश्ते की बात है ना?
जी बस ऐसी। जी पहला सवाल ये है कि रेहाना साहिब आपके साथ रहती हैं?
रहती तो नहीं है, असल में रेहाना की दादी के इंतकाल के बाद हम उसे यहाँ ले आए हैं कि अकेली ना रहे।
माफ करना, नौकरी करती हैं?
मैं और शकायक अभी पढ़ रहे हैं। ये शकायक का घर है, ऊपरी मंजिल पर उसके वालिदैन रहते हैं। अच्छा रेहाना की बात है, हाँ वो नौकरी करती है।
बहुत शुक्रिया।
दूल्हे की वालदा है ना?
जी जी, जी हाँ।
माफ कीजिएगा, आपके साहबजादे क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं?
जी हाँ जी।
माफ कीजिएगा, उनकी उम्र क्या है?
यही कोई 40 साल।
और क्या करते हैं?
ये कंपनी है।
अच्छा कंप्यूटर कंपनी है, मैं समझ गई आप कौन है। आप कैसे हैं? अफशीन साहब ठीक है?
जी शुक्रिया, वो भी ठीक है। माफ कीजिए, असल में मुझे जरा जल्दी है, रेहाना के यहाँ भी सान्या हो गया है। असल में मैं ये जानना चाहती थी कि रिश्ते के लिए किससे बात करनी चाहिए। रेहाना का कोई बड़ा बूढ़ा है?
अब तो रेहाना बिल्कुल अकेली है, और इस सानिया के बाद तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि आप रिश्ते की बात करें। समझ ना, वो बहुत गमगीन है।
शुक्रिया बहुत, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छी बात है, मैं फिर किसी मुनासिब मौके पर आऊंगी।
اچھا نہیں لگ رہا، باہر کھڑی ہوئی، اندر آئے نا، پلیز آئے نا۔
بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آؤں گی، بہت شکریہ۔
معاف کیجیے گا، ایک منٹ، افشین صاحب کو میرا ضرور سلام کریے گا۔
ضرور ضرور کہوں گی۔ اچھا، خدا
حافظ۔
اب تک تو نہیں تھے قاسم صاحب، لیکن اب کچھ گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہو۔ تم خود ہی بتاؤ، تمہیں میری قسم، میں ان قالینوں کا آخر کیا کروں؟ کیا مطلب، سارے قالین واپس کر دوں اور نقصان کا وہ ازالہ کریں؟ کیا میرے 30 سالہ ریکارڈ کو تم بچاؤ گے یا چنے خریدے ہیں؟
اگرچہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن سب کو خرید لیتا ہوں۔ ایک گھنٹے بعد میرا شاگرد آئے گا، سب کو لے جائے گا۔ ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے بھائی، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ فکر نہ کرو، جیسے ہی تمہارے حالات بہتر ہوں گے اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ مجھ سے جو بھی بن پڑے گا وہ میں تمہارے لیے ضرور کروں گا۔
ٹھیک ہے،
تم پریشان نہ ہو۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔
حاجی محمود، نہیں بھائی، برا نہیں ہے، بڑا تام جھام کھڑا کر لیا، مال بانی خوب کما رہے ہو، اب اچھے علاقے میں بھی آ کے رہنے لگے۔
استغفر اللہ۔
جلدی نہ کرو حاج محمود، ذرا ٹھہرو، سارے گاہکوں کے سامنے ایسے ہی رہتے ہو۔
آپ کون ہیں خاتون، کیا کام ہے آپ کو؟
پاری ایک کپ چائے پہ خوش ہو جاتی ہے، باقی تمہاری سخاوت۔
دیکھیے خاتون، آپ کو اپنے پیسے مل گئے ہیں، آپ جائیے یہاں سے، جائیے یہاں سے، جائیے۔
لو بینک میں ڈال دو، اس کے سود سے مزے کرو۔
یہاں سے چلی جاؤ، صبح صبح میرا دماغ خراب مت کرو، یہاں ایسی باتیں مناسب نہیں، سود و بیاج کی باتیں یہاں نہ کرو۔
بڑے تعجب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سود کی بات نہیں کروں گی، لوگوں کی دولت ہڑپنا کیسا ہے بھائی، یہ بھی نہ کہوں۔
لگتا ہے تم انسانوں کی زبان نہیں سمجھتی، تمہارے ساتھ دوسری زبان میں بات کرنی پڑے گی۔
دوسری طرح کیسے؟ ہاں کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ سب کو تو الو بنا سکتے ہو، اب مجھے بھی الو بنانے چلے ہو، سب کچھ ڈراما ہے۔
ذرا زبان سنبھال کے بات کرو، اپنا کام کرو، مجھے غصہ نہ دلاؤ۔
اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہو، منہ کھول دوں گی تو ساری عزت مٹی میں مل جائے گی، ایسا کچھ نہ کرنا کہ دو چار باتوں میں تمہارا بوریا بستر گول کر دوں، مجھے بہت کچھ معلوم ہے، سمجھے؟
جس کا دامن صاف ہوتا ہے اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی۔
تمہارا دامن اتنا صاف بھی نہیں ہے، حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ، تمہیں خود بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو سارا کٹراک پھیلا رکھا ہے وہ اس بیچاری عورت کا ہے، تم نے سب ہڑپ کر لیا ہے، ہے نا؟ جب پری کہتی ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معلوم ہے۔
ٹھیک ہے، کام کی بات کرو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
ختم کرو، ختم کرو حاجی محمود، میں تمہاری خیریت پوچھنے یا نہیں آئی ہوں، مجھے ہوشیانگ نے بھیجا ہے۔
کون؟ ہوشیانگ؟
ہاں، ہوشیانگ نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ لڑکی کو جا کے بتا دوں کہ یہ جو کاروبار تم نے پھیلا رکھا ہے نا، یہ دولت جو کمائی ہے اس کی وراثت ہے۔ محمود صاحب سمجھ رہے ہو، پری کی دو باتوں سے یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، نکل جائے گا۔
اچھا تم میرے پاس کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟
پری سمجھوتا کر سکتی ہے، جو بات اسے معلوم ہے اس کی قیمت کبھی اسے اچھی طرح اندازہ ہے، اسی لیے یہاں آئی ہے۔ اصل میں دل نہیں چاہ گی لڑکی کے پاس جا کے ساری بات اسے بتاؤں، اصل میں آدمی کو ایسے کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے جو اس کے لائق ہو، دھوکا نہ دے، سمجھ رہے ہو نا؟
ٹھیک ہے، آخری بات کہو۔
بس آخری بات بتا رہی ہوں، ہوشنگ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس لڑکی کے پاس جا کر اس کو بتاؤں کہ اس کی ساری میراث تم کھا کر بیٹھے ہو، لیکن میں نہیں گئی، پہلے تمہارے پاس آئی کیونکہ تم تاجر ہو، محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو، خون پسینہ ایک کیا تب یہاں پہنچے، اس لیے تم سمجھ ہی رہے ہو گے کہ تم میرے لیے زیادہ مناسب آدمی ہو حاج محمود، نہ کہ وہ لڑکی جس کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ اب بتاؤ سمجھوتا کرو گے یا نہیں؟ کیا ہوا، دھچکا لگ گیا؟
باہر نکلو، یقیناً تمہیں بھیک دینے کا بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا، دب ہو جاؤ یہاں سے۔
تو منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہ جان لو کہ بڑی جلدی ہار مان لی، بڑی آسانی سے 30 برس کی شہرت گوا دی تم نے۔
استغفراللہ،
میں تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ دن میں 100 بار خود پر لعنت بھیجو گے کہ کیوں پری کو بھگا دیا۔ سلامت رہو۔